यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः तमः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रखता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। यहाँ उस पंखे की बहुत आवाज है, ये पंखा बिना आवाज वाला लेकिन अभी आपको इसको पानी के लिए नवे माले पे आना पड़ेगा। तो ये अध्याय है दिव्य ज्ञान। जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित होता है वो कैसा कार्य करता है उसका वर्णन यहाँ हुआ है। तो जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में होता है यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो भी स्वतः मिलता है लाभ उससे संतुष्ट होता है। द्वंद्वातीत अभिमत्सर, जो द्वंद्व है इस भौतिक जगत में अच्छा बुरा इस सब द्वंद्व से परे होता है। विमत्सर, ईशालु नहीं होता है किसी के प्रति। समा सिद्धाव सिद्धाव, और इस वजह से सफलता असफलता में संभाव रखता है। और ऐसा जो व्यक्ति है कृत्वापि न निबध्यते, कुछ भी कर्म करने पर भी वो बंधन नहीं होता। तो रूपा जी अक्सर इस विषय में उदाहरण देते हैं, जैसे दूध है और दही। तो ज़्यादा दूध पीने से डाइजेशन कई बार खराब हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए दही देता हूँ, जो दूध का ही एक रूप है, दूसरा रूप। तो उसी प्रकार से एक कर्म है या विकर्म है और दूसरी तरफ है अकर्म, दोनों ही एक्टिविटी है, दोनों में ही क्रिया है, लेकिन एक प्रकार के क्रिया करने में बंधन होता है और एक प्रकार के कर्म करने में वही कर्म मुक्ति का कारण बनते हैं, कर्म बंधन छुटकारा का कारण बनते हैं। तो ये कर्म योग है, योगः कर्मसु कौशलम, आर्ट ऑफ वर्किंग, कैसे काम किया जाए। क्योंकि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धयेत अकर्मणा, बिना काम किए तो हम शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर कर्म करेंगे तो बंधन आता है, तो इसलिए कर्म योग की जरूरत है कि कर्म ऐसा किया करा जाए कि भौतिक जगत में शरीर का यापन भी हो जाए और वही कर्म शरीर बंधन से मुक्ति का कारण बने। तो ये है कर्म योग। तो भगवान इस अध्याय में थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ये कर्म योग ज्ञान योग इसको समझा रहे हैं। तो अर्जुन थोड़ा द्वितीय अध्याय के को सुनकर के उनको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि भगवान कह रहे हैं एक तरफ कि आप ज्ञान में स्थित रहो, बुद्धि 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 से काम करो, और दूसरी तरफ फिर कह रहे हैं ठीक है अभी आप युद्ध करो। तो ऐसे इनको कंफ्यूजन था कि क्या करना चाहिए, कि केवल ज्ञान में स्थित होना मतलब बस ध्यान करो कर्म छोड़ दो। फिर भगवान फिर दोबारा बोलते हैं नहीं तुम युद्ध करो। तो दोनों में क्या सामंजस्य है इस पर विचार कर रहे, पूछ रहे। तो भगवान उसके उत्तर में और विस्तार से फिर थर्ड चैप्टर में फोर्थ चैप्टर में बताते हैं। लेकिन फिर से अर्जुन को अभी भी कुछ प्रश्न दे, फिर दोबारा फिफ्थ चैप्टर में और क्लियर करते। तो क्या है कर्म और ज्ञान में क्या अंतर, क्या संबंध है? क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन अर्थात ज्ञान जब हो जाता है भगवान का तो बस तुरंत आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कि भौतिक संसार के अंदर कोई काम नहीं हो सकता, फिर वो दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, इसलिए वो सीधा जंगल में चले जाओ ये सब काम छोड़। लेकिन भगवान बार बार अलग अलग श्लोकों में अर्जुन को ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इमैच्योरली हम लोग काम नहीं छोड़ सकते। जब तक हमारा फलों में आसक्ति है, कर्म फल से हम आसक्त नहीं हुए हैं, तब तक कर्म करना नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि जो ज्ञान मार्ग या जो ध्यान मार्ग का तरीका है, जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है भक्ति तक पहुंचने का वैदिक विधि का, उसमें दो स्टेज हैं योगारूढ़ और योगारूढ़क्ष। तो एक है प्राइमरी स्टेज और एक है सिद्ध अवस्था एडवांस स्टेज। तो जो योगारूढ़ है उसमें एक स्थिति आने पर आप अपने जो वैदिक प्रणाली के अनुसार जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं, नियत कर्म है, आप वो छोड़ सकते हैं और छोड़ करके आप एकांत में जाकर के ध्यान कर सकते हैं ब्रह्म का, वो उस विधि में अलाउड है, जिससे वो लोग सिद्धि प्राप्त करने पर निराकार ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। तो लेकिन उस पाथ में भी, उस पथ पर भी इमैच्योरली कार्य नहीं छोड़ा सकता है। जब तक आसक्ति है तो भगवान आते हैं विषयादि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसप्रत्यस्य परम दृष्टानि। तो अभी रस तो गया नहीं है विषयों के प्रति, तो हम यदि कार्य छोड़ देंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे हमेशा के लिए। एक परिवार छोड़ेंगे दूसरा परिवार अपनाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए वो भगवान मना करते हैं। और जहां तक भक्ति योग की बात है तो वहां तो कर्म छोड़ने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि भक्ति अर्थ, भक्ति का अर्थ है क्रिया, लेकिन उसमें केवल गुण में अंतर होता है कार्य के। जिस चेतना से कर्म किया जाता है उसमें अंतर हो रहा है। भक्ति तो प्रारंभ से लेकर अंत तक कर्म ही नहीं है, उसमें तो एक्टिविटी है, क्योंकि भक्ति का मतलब ही है स्वामी सेवक और बीच में उनके एक्टिविटी, सेवा चल रही है, सेवा मीन्स एक्टिविटी। वहां पर तो एक व्यक्ति, तो व्यक्ति को तो हमेशा सेवा होती है। निराकार में संभव है लीन हो जाना जिसमें कोई क्रिया नहीं है, बट डिवोशन लाइफ में भक्ति में तो हम भक्त हमेशा सेवा करता है, कार्य करता है। तो अर्जुन का ऐसा शंका थी तो भगवान बताए इस प्रकार। लेकिन फिर भगवान जब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वास्तव में ज्ञान में स्थित होकर के जो व्यक्ति कर्म करता है वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है, इसलिए वो कर्म न करने के समान है वास्तव में। लेकिन कोई कर्म न करे लेकिन अभी आसक्त है, मन के अंदर इच्छाएं हैं और कर्म ना करे तो वो भी एक प्रकार का अटैचमेंट है, इसलिए उसका भी बंधन होता है, उससे बंधन होता है। भगवान बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन, मां फल कर्म फल हेतु माते संगस्य अकर्मणि अकर्म से भी हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। इमेच्योरली कर्म को छोड़ना वो भी एक दूसरी प्रकार की आसक्ति को दिखाता है। तो अगर हम कर्म नहीं करेंगे और अभी अनासक्त नहीं हुए हैं तो ये जो श्वास ले रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं तो वो भी बंधन का काम करते हैं, क्योंकि बिना कार्य किए तो कुछ नहीं रह नहीं सकता व्यक्ति। जीवन का लक्षण है कार्य करना, तो इसलिए वो एक्चुअली कभी भी संभव नहीं है कि आप कर्म ना करके नैष्कर्म्यम प्राप्त करें। लेकिन नैष्कर्म्यम वास्तविक नैष्कर्म्यम प्राप्त होता है। नैष्कर्म्यम मतलब जब कर्म का बंधन नहीं लगता है। तो नैष्कर्म्यम प्राप्त होता है किस प्रकार के कर्म करने से, वो बता रहे हैं भगवान भगवद्गीता में कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो कर्म करता है उसका कोई उसको बंधन नहीं करता है। तो क्या है वो, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। तो जो कार्य यज्ञ के लिए किया जाए, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वो कार्य का कोई कर्म बंधन नहीं होता है, बाकी सब कार्य कर्म बंधन होता है। अभी एक सेगमेंट हम लोग बाबा सुनते रहते हैं, लगता है हाँ सुन बहुत बार सुना यज्ञार्थात कर्म, लेकिन मेडिटेशन की जरूरत है। तो सब कार्य जो भी व्यक्ति कर रहे हैं वो ऐसे है जैसे सपने के अंदर हम बहुत कुछ कार्य करते रहते हैं। सपने में बड़ा जब हम सपना देखते हैं तो बहुत रियल दिखता है ना हमको, सपने में जो भी देखते हैं बहुत रियल दिखता है। उससे हम कभी डरावना सपना है तो भयभीत हो जाते हैं, सब उसके लक्षण प्रतीत होते हैं और उस समय बहुत रियल दिखता है, बहुत मीनिंगफुल दिखता है। लेकिन जैसे ही वो सपना टूटता है उसका वहीं सब समाप्त हो जाता है, उसका और कोई मीनिंग आगे तक नहीं रहता है। जब तक सपना चलता था तब तक मीनिंगफुल था, उसके बाद तुरंत भी हो गया। तो उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या कृष्ण भावना के बिना जो भी कार्य हो रहा है वो ऐसे ही सपने की तरह से हो रहा है। इस बात पे अगर हम ध्यान दें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब हमारे सब कार्य व्यर्थ हो रहे हैं। हमको लग रहे हैं बड़े रियल, फैमिली मेंटेनेंस बहुत रियल काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मेरी जॉब की ड्यूटी बहुत बड़ी है, उसके अंदर इतनी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर इतना काम हो रहा है, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो उसका फल ये होगा। इट्स रियल, वो रियल है भी, ऐसा नहीं कि वो है ही नहीं, लेकिन वो इल्यूजन इस तरीके से है कि हमारा उससे वास्तव में कोई नित्य संबंध नहीं है उन क्रियाओं से। जैसे सपने के अंदर जो भी हमारे कार्य होते हैं उससे हमारा कोई वास्तव संबंध नहीं है, वो केवल तभी तक इम्पोर्टेंट है जब तक वो हम सपना देख रहे हैं, उसके बाद में उनका कोई यूज नहीं। इसे हम देखते हैं कई बार कोई आदमी होता है बहुत किसी कुछ कार्य में इन्वॉल्व रहता है, कुछ प्लानिंग होती है उसकी, बहुत सारी हर एक व्यक्ति की प्लानिंग होती है, लेकिन अचानक किस दिन चला जाता है तो फिर वो सोचने मजबूर रहते हैं, अभी एक क्षण पहले सोच रहा होगा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इतना इंपॉर्टेंट है मेरे को, इसको ये करना है, कितना अपने को कितनी जिम्मेदारी थी उसके ऊपर, क्या अभी क्या रहा तो फिर क्या वो जो पूरा जीवन जो हम सोचते रहे कि मेरी ये जिम्मेदारी, मेरी वो, मैं ये करूँगा, उसका अल्टीमेटली क्या यूज रह गया? बिकॉज द मोमेंट यू विल लीव आप तो अलग हो जाएंगे, फिर इससे कोई संबंध ही नहीं रहेगा आपका। तो इसलिए वो ड्रीम की तरह से, द मोमेंट ड्रीम इज ओवर इज यूज, उस क्षण उसका सब खत्म हो गया, उसका यूज फिनिश। तो इसलिए कृष्ण भावना के अलावा जो भी कोई कार्य हो रहा है इट हैज गॉट नो वैल्यू एट ऑल, इट इज जस्ट जीरो। वो हो सकता है पूरे देश का संचालन करना, प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा काम है, बट इज जीरो। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस पद से वो नीचे आएगा प्राइम मिनिस्टरशिप से या फिर शरीर को त्याग करेगा, वो सब अचानक उसके लिए गायब हो जाएगा, देन नेक्स्ट बॉडी, देन इमीडिएटली अभी नेक्स्ट बॉडी मिल गया तो पहले के जीवन में क्या क्या काम बाकी थे, उसने क्या किया, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। नाउ ही कैन नॉट कंटिन्यू दैट वर्क, नो नॉट एट ऑल। तो आप सोचिए, यदि कृष्ण भावना भावित हुए बिना हम जो भी काम कर रहे हैं, उस चेतना के बिना हम जो भी काम कर रहे हैं, वो सब निरर्थक है, यूजलेस, इससे यूजलेस, श्रम है वही केवल। जो भी कार्य कृष्ण चेतना के बिना किया जाता है, दैट इज ड्रीम, सिंपली अ ड्रीम। अभी हमको एनालाइज ये करना है, 24 आवर्स में हम कितना समय ड्रीम कर रहे हैं। तो जो रात को सोते हैं वो तो ड्रीम है ही, बट डे टाइम में भी मोस्ट ऑफ वर्क, मोस्ट ऑफ टाइम वी आर नॉट कृष्ण कॉन्शियस। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियस होना है। कृष्ण कॉन्शियस मतलब क्या है? वी हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्ण, आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण, कृष्ण के साथ हमारा संबंध, इस संसार के साथ कृष्ण का संबंध, और इस संसार में हमारा संबंध इस दृष्टिकोण से, जो कृष्ण के साथ संबंध है उस दृष्टिकोण से हमारा क्या संबंध। एवरी मोमेंट, हर क्षण हम इस चेतना में जब हैं और उसके अनुसार जो कार्य करते हैं, तब वो कार्य कृष्ण भावना भावित कार्य कहलाता है। उस कार्य का कर्म फल नहीं बनता है, भौतिक कर्म, उसका कोई भौतिक फल नहीं बनता है। तो उसके बारे में आगे कहा गया है कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस, जो इस प्रकार के ज्ञान में स्थित होकर कर्म करता है। कौन से ज्ञान में? क्या क्या है ज्ञान के मुख्य एलिमेंट? दैट हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये संसार भगवान की संपत्ति है, हम भी भगवान की संपत्ति हैं, शरीर भगवान की संपत्ति है, ये घर, जो कुछ भी है संसार में, सब भगवान की संपत्ति है। इसीलिए ये सब चीज का उपयोग केवल उन्हीं के हेतु होना चाहिए, और एवरीथिंग एल्स इज मिथ्या, इल्यूजन है। इस ज्ञान में स्थित होकर, इसको बोलते हैं ज्ञानावस्थित चित्त। तो जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित होगा वो गत संगस्य मुक्तस्य, वो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति के प्रभाव में हम कैसे आते हैं? अपनी अशुद्ध चेतना की वजह से हम प्रकृति के प्रभाव में फंसते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद मोह है नमोहम सर्वभूतानि सर्वे यान्ति परम तप। इच्छा और द्वेष, द्वंद, जो अज्ञानता पर आधारित है। अगर किसी को ये बोध है कि मैं कृष्ण दास हूं, तो किससे द्वेष करेगा, किससे ईर्ष्या करेगा, क्यों करेगा? हम द्वेष क्यों करते हैं, ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं मैं भोगता हूं, तो अगर मेरे भोग में कोई दूसरा आदमी रुकावट बनता है तो हमें उससे ईर्ष्या होती है। अरे मेरी प्रश्न सबसे कौन से, अभी उससे आगे जा रहा है, हमें उससे द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी। तो अगर ये ज्ञान में हम स्थित हैं तो द्वंद से हम मुक्त होंगे। कि जो भौतिक जगत में अच्छा बुरा है वो तो है ही नहीं, दैट्स टेम्पररी, दैट्स इल्यूजन। तो ज्ञान अवस्थित चित्त, तो गत संगत, उसकी वजह से हम गत संगत से उससे मुक्त हो जाएंगे। तो उसके लक्षण क्या होंगे? जो व्यक्ति ऐसा हो गया है तीनों गुणों से, तो नाम लिख देना आसान है, गुणातीत, सो एंड सो, ऐसे बहुत सारे नाम गुणातीत हैं, लेकिन लक्षण से पता लगता है कोई भी चीज। तो गुणातीत होने के क्या लक्षण है? यज्ञयाचरतः कर्म, उसके कर्म होंगे केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब स्तर पर, उसके इंद्रियों के कार्य, उसके मन के कार्य, बुद्धि के कार्य, हर कार्य पूर्ण रूप से केवल भगवान की संतुष्टि के लिए होंगे। उसे अपने लिए वो कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसका अपना कुछ वो समझता है कि उसका भगवान से अलग कुछ नहीं है, भगवान से अलग कुछ देखना ही माया है। तो भगवान से अलग देखना माया है, इसीलिए जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वो इस भौतिक जगत में रहता है, लेकिन उसका भौतिक जगत में रहना, भौतिक जगत को देखना, और एक सामान्य व्यक्ति का इस भौतिक जगत में रहना और इस भौतिक जगत को देखना बिल्कुल अलग है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करता है, और उसके सभी कार्य समग्रम प्रविलीय से, उसके सभी कार्य दिव्यता को प्राप्त होते हैं, उसका विलीय से, वो सब मर्ज इन ट्रांसेंडेंस, उसको कोई फल नहीं बनता है, कर्म फल नहीं बनता है। तो फिर आगे बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में, ब्रह्मा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें वह हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वो खुद भी अध्यात्म है, वो जो कार्य कर रहा है वो भी अध्यात्म है, जहां वो आहुति दे रहा है वो भी अध्यात्म है, उसका गंतव्य भी अध्यात्म है, सब कुछ अध्यात्म है। इसलिए वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक जगत में नहीं रहता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ अध्यात्म है। वो कुछ भौतिक जगत भौतिक नहीं देखता है, वो सब अध्यात्म देखता है। सर्व इदम खल्व ब्रह्मन, सब कुछ जो है वो ब्रह्मन है, वो ये साक्षात्कार करता है। तो क्या मतलब है इसका, सर्व सर्व खल्व इदम ब्रह्मन, जो भी कुछ है सब ब्रह्म है, वो कुछ भौतिक नहीं देखता है। तो क्या परिभाषा है भौतिक की और क्या परिभाषा है अध्यात्म की, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या परिभाषा है भौतिक की और क्या परिभाषा है अध्यात्म की, व्हाट इज मटीरियल एंड व्हाट इज स्पिरिचुअल। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए क्या कोई चीज भौतिक होती है? सर्व सर्व खल्व इद ब्रह्मन, उसके लिए सब कुछ क्या है? ब्रह्मन स्पिरिचुअल। तो इसका क्या मतलब है, क्या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए कोई चीज भौतिक है? Does he see anything material?
Yes,
I'm not. But we are saying Krishna Bhavana Bhavit. We are talking of a Krishna conscious person. I'm not saying state, we are saying of one who is Krishna conscious. क्या वो कोई चीज को भौतिक देखता है? और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है क्या वो कोई चीज आध्यात्मिक देखता है? उसके लिए सब कुछ भौतिक है। भगवान विग्रह वो भी भौतिक है, पत्थर है, ये पुस्तक भी सामान्य पुस्तक है, उसको कोई भी चीज आध्यात्मिक नहीं दिखी। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है तो वो तो हर चीज में कृष्ण को देखता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, वो जो भी स्थावर जंगम देखता है उसको वो चीज बैठी वो नहीं दिखती है उसको। तो इष्ट देव की स्फूर्ति सभी जगह में अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। तो केमिस्ट्री में आता है ना, कन्वर्जन करते हैं एक प्रकार के गुण दूसरे। सो दिस इज अ ग्रेट साइंस, हाउ टू कन्वर्ट मटेरियल टू स्पिरिचुअल। भौतिक को आध्यात्मिक में परिवर्तित करने की कला है कृष्ण भावनामृत। तो इसका क्या मतलब है, सर्व खल्व इद ब्रह्मन, सब कुछ ब्रह्मन है, इसका मतलब क्या है? तो मायावादी लोग भी बोलते हैं सर्व खबर ब्रह्मन, सब कुछ ब्रह्मन है। तो इसलिए ये जो चीज है, ये जो हम सब अलग अलग रूप देख रहे हैं, जो भौतिक जगत का बना हुआ है, तत्व बने हुए हैं, इसलिए एक्चुअली ये सब मिथ्या है उनके अनुसार। ये तो है ही नहीं, ये तो हमको केवल अज्ञानता के स्तर में प्रतीत हो रहा है। अदरवाइज एवरीथिंग इज वन, सब कुछ एक ही है, सब कुछ ब्रह्मन है, कुछ जड़ है ही नहीं, कुछ भी उससे अलग नहीं है। द्वितीय नास्ती और दूसरा कुछ नहीं। तो भक्त का सर्व खल्व इद ब्रह्मन और एक मायावादी का सर्व खल्व इद ब्रह्मन, दोनों में क्या अंतर? तो मायावादी लोगों के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि जगत मिथ्या है, ये है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये नहीं है, ये नहीं है, हम नहीं है, इधर नहीं है। तो नहीं, दैट इज ए रॉन्ग अंडरस्टैंड, नहीं है। लेकिन ब्रह्म सत्यम है, जगत मिथ्यम नहीं है। वो जगत मिथ्या कार्य करता है, इल्यूजरी काम करता है वो व्यक्ति के लिए जो अज्ञानता से आच्छादित है, उसके लिए इट बिकम इट अपीयर्स मटीरियल, इट अपीयर्स मटीरियल, अदरवाइज नथिंग इज मटीरियल। व्हाट डज इट मीन नथिंग इज मटीरियल? तो आध्यात्मिक ब्राह्मण का अर्थ है भगवान के दृष्टिकोण से सब कुछ देखना, जैसे भगवान देखते हैं वैसा देखना। तो भगवान कैसे देखते हैं हर चीज को, जैसे मैंने लेक्चर में समझा, वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द क्लाउड। जैसे बादल होते हैं तो एरोप्लेन में जा रहे होते हैं, तो क्रॉस क्लाउड्स, व्हेन वी गो अदर साइड ऑफ द क्लाउड, एकदम से सूरज क्लाउड से इधर तो सूरज दिख नहीं रहा है, एंड द मोमेंट वी पास क्लाउड्स इमीडिएटली सनलाइट। तो ऐसे ही हम लोग बादल के इस ओर हैं, हम लोग का दृष्टिकोण इधर से देखने का है संसार को, क्लाउड के अंदर से देखने का है, और भगवान उसको ऊपर से देखते हैं। तो भगवान इस संसार को जो देखते हैं तो कैसे देखते, जिस दृष्टिकोण से देखते हैं तो उनके लिए कोई भी चीज वो भौतिक नहीं है, एवरीथिंग इज हिज एनर्जी। उनके लिए कोई चीज मिथ्या हो सकती, कोई क्रिएशन, भगवान बोलते हैं जो चीज एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसमें से कोई भी चीज जो निकली वो कैसे मिथ्या हो सकती है, नॉन एग्जिस्टेंट कैसे हो सकती। तो भगवान के दृष्टिकोण से ये भौतिक जगत क्या नहीं है, भौतिक जगत डजंट एग्जिस्ट। भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान भगवद गीता में, भूमि अपो, ये सब जो आठ तत्वों की बनी मेरी प्रकृति है, भूमि अपन वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये मेरी प्रकृति है भगवान बोलते हैं। भगवान नहीं बोले कि ये मिथ्या है ही नहीं, भगवान बोले ये आठ तत्वों की बनी प्रकृति है, मेरी प्रकृति है, लेकिन ये अपरा प्रकृति है। और फिर बताए अपरयम तु तत्व, इससे भी परा एक और प्रकृति है जो जीव भूत की बनी है, जो जीवों की बनी है। हाँ, तो भगवान के दृष्टिकोण से ये भौतिक जगत एग्जिस्ट करता है। तो हम पढ़ते हैं भागवतम में कि कैसे जब ये भौतिक जगत की सृष्टि होती है तो ब्रह्म ज्योति में एक जगह पर ये एक बादल की तरह से प्रकट होती है भौतिक प्रकृति। और फिर भगवान महाविष्णु उसमें प्रवेश करते हैं और फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड, अलग अलग ब्रह्मांड बनते हैं, और फिर अलग अलग ईक्षता भगवान देखने से सभी आत्माओं को उसके अंदर प्रतिपादित करते हैं जो उनके शरीर के अंदर विलय हो गई थी प्रलय के समय में। और इस प्रकार से फिर दोबारा से सृष्टि प्रारंभ होती है, ब्रह्मा जी आगे सृष्टि करते हैं। और इस प्रकार से जो वर्तमान समय में हम फॉर्म देख रहे हैं अलग अलग, ये एक के बाद एक के बाद एक इस प्रकार से बनती। तो ये भौतिक जगत मिथ्या मतलब है ही नहीं, ऐसा नहीं, भौतिक जगत है। और भगवान के दृष्टिकोण से इट्स स्पिरिचुअल। तो प्रभुपाद जी कैसे उदाहरण देते हैं, जैसे ये नखून, अरे हम नख बड़े जाते हैं तो उसको काटते हैं, अगर थोड़ा सा भी नीचे से काटते हैं अगर नखून तो क्या होता है, पेन होता है। तो वही नखून एक मिलीमीटर अंदर पेन करता है और बाहर पेन नहीं करता है, लेकिन दोनों ही शरीर से ही निकल रहे हैं, शरीर के ही दोनों अंग हैं, लेकिन उनकी नेचर अलग अलग है। वन इज डेड मैटर एंड वन इज हैविंग लाइफ, वन इज कॉन्शियस और एक डेड है। तो हमारे दृष्टिकोण से इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज नॉट मिथ्या, इट इज कमिंग फ्रॉम द बॉडी, इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन उसकी नेचर अलग है। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत भगवान के दृष्टिकोण से ये भी उनकी शक्ति है, परास्य भ्रमणा शक्ति, सभी कुछ भगवान की शक्ति, कोई भी मिथ्या नहीं है, भगवान की शक्ति। लेकिन शक्ति के प्रकार अलग अलग है, सभी शक्ति एक सी नहीं है, शक्ति के प्रकार अलग अलग। जैसे प्रभुपाद ध्यान देते हैं सूर्य, सूर्य की किरणें, तो अभी हम इस पृथ्वी पर खड़े हैं सूर्य सुबह को सूर्य के प्रकाश में, तो हम भी सूरज के प्रकाश में हैं, हम नहीं हैं अंधकार में, सूरज के प्रकाश में है, गर्मी है, प्रकाश अनुभव कर रहे हैं, गर्मी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन यदि हम सूर्य ग्रह पर पहुंच जाए, सूर्य लोक पर, तो भी हम सूर्य ग्रह सूर्य के प्रकाश में ही हैं उसमें भी, लेकिन वहां पर गर्मी और इस धरती के अंदर जो गर्मी और प्रकाश है वो सेम नहीं है, दैट इज वेरी हाई इंटेंसिटी, दिस इज लो इंटेंसिटी। तो उसी प्रकार से परास्य ब्रह्मणा शक्ति, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत ये सब भगवान की शक्ति है, लेकिन उसके वैरायटी अलग अलग है, उसके गुण अलग अलग है। तो ये जो भौतिक जगत है ये अपरा शक्ति है, ये जड़ पदार्थ है, और अंतरंग शक्ति और या आध्यात्मिक शक्ति है जो चेतन जीवों की बनी। तो इस प्रकार से जो भौतिक तत्व हैं वो भी आध्यात्मिक हैं यदि उनका उपयोग उस हेतु के लिए किया जाए जो जो भगवान की इच्छा है, देन इट इज स्पिरिचुअल। भौतिक तत्व को जब भगवान की सेवा के लिए प्रयोग किया जाए जिसका वो हेतु है, भगवान ही भौतिक तत्व के मालिक कौन है, भगवान ही है ना, तो भौतिक तत्व का प्रयोग भी किस लिए होना चाहिए, भगवान की सेवा होना चाहिए। तो भगवान ही भौतिक तत्व की सृष्टि किस लिए करते हैं कि जो जीव हैं जो जो भोग करना चाहते हैं भौतिक तत्वों का उनको चांस दिया जाए, बट अल्टीमेटली जिससे वो लोग सुधर करके वापस अपनी राइट कॉन्शियसनेस में आ सके। तो यदि इस भौतिक जगत में रहते हुए कोई व्यक्ति उसी हेतु के लिए भौतिक संसार का उपयोग करता है तो उसके लिए भौतिक संसार फिर भौतिक नहीं रहता, इट बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड, सो इट रिमेन्स जड़, जड़ रहता है। लेकिन अभी एक भक्त के लिए वो एक भगवान से एक पर्दा की तरह से काम नहीं करता है ये जड़ पदार्थ के साथ उसका संपर्क, बल्कि क्योंकि वो उसको भगवान की सेवा में लगा रहा है अभी, इसलिए वो जड़ पदार्थ वो ब्रह्महुतम अभी वो आहुति बन जाता है, ब्रह्म वो भी ब्रह्म है जो आहुति दे रहा है। तो जो भौतिक पदार्थ हम भगवान को भोग लगाते हैं वो भी आध्यात्मिक हो जाते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण रूप में देते हैं प्रसाद। अभी कोई बोलेगा आज इसको प्रसाद क्यों कह रहे हैं, हम भी वही खा रहे हैं, वही रसगुल्ला हम खा रहे हैं, वही रसगुल्ला आप खा रहे हैं, वही रोटी चावल हम खा रहे हैं, इसको प्रसाद नाम कैसे दे सकते हैं, क्या अलग है इसमें। प्रसाद इज स्पिरिचुअल, खाना इज मटीरियल, हाउ वो भोग है और वो प्रसाद है, तो कैसे वो अंतर हुआ, फिजिकली दोनों एक से ही, तो कैसे अंतर हुआ दोनों में, तो वही है। इसी को अगर हम समझ नहीं कैसे वो अंतर है, भोग और प्रसाद में कैसे अंतर है, या हरे कृष्ण मंत्र और एक कोई सामान्य शब्द, या हरे कृष्ण मंत्र ही स्पोकन बाय मायावादी, तो एक स्पिरिचुअल है एक मटेरियल, तो फिर क्या है डिस्टिंग्विशिंग फीचर मटेरियल और स्पिरिचुअल में, कॉन्शियसनेस चेतना। अगर हम भगवान जिस चेतना से, भगवान जिस तरीके से संसार को देखते हैं उसी चेतना से हम संसार को देखेंगे और उसका बिहेव करेंगे, देन इट इज एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल ब्रह्मन। इस तरीके से सर्व खलवेद ब्रह्मन, एक्चुअली पूरा संसार प्रसाद है, एक शुद्ध भक्त के लिए पूरा संसार प्रसाद है। लेकिन हमारी प्रारंभिक स्थिति में हमको एक इस ये चेतना में हम लोग नहीं होते हैं, इसलिए इसको धीरे धीरे सिस्टमेटिकली लाने के लिए हम लोग विग्रह स्थापित करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो तो हर जगह पर विग्रह देखता है, हर जगह कृष्ण को देखता है, इसलिए जो मंदिर पूजा है वो विशेष रूप से प्रारंभिक भक्त के लिए विशेष महत्व की है। शुद्ध भक्त जब मंदिर जाता है तो साक्षात भगवान को देखता है, मंदिर के बाहर भी भगवान को देखता है, लेकिन एक प्रारंभिक भक्त सब जगह जब वो कार को देखेगा तो वो उसको भगवान में नहीं देख पाएगा, लेकिन शुद्ध भक्त किसी भी चीज को देखेगा तो भी भगवान को देखेगा, हर वस्तु में भगवान को देखेगा। किस तरह से, मया ततम इदम सर्वम जगत जगत अव्यक्तम होती ना, भगवान बोलते हैं मैं सब संसार में व्याप्त हूँ अपनी शक्ति के रूप में, तो वो किसी भी चीज को देखेगा दिस इज कृष्णा पोटेंसी, सो ही विल बी रिमेंबर्ड ऑफ कृष्ण। जैसे प्रभुपाद जी के पर्सनल दर्शन देखे, प्रभुपाद जी कहीं भी जाते थे एनीथिंग ही विल सी इमीडिएटली ही विल रिलेट इट टू कृष्ण, सो ही विल सी एवरीथिंग इन कॉन्टेक्ट विद कृष्ण, हाउ कृष्ण सीज दिस। पर हमारी चेतना क्या है बहुत समय से, हाउ टू सी एवरीथिंग फॉर माई एंजॉयमेंट सेपरेट फ्रॉम कृष्ण। What is that shlok? Defining Maya? No.
Vipar
वितीर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत आत्मनि देन आत्मनो माया यथा भासो था ट्रांसलेशन ये है रितेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनो जो भी चीज भगवान के संबंध के बिना देखी जाती है वो माया है भगवान के रिलेशन के बिना किस चीज को देखना है वो माया है तो इसीलिए एक शुद्ध भक्त के लिए कुछ भी मटेरियल नहीं है और एक अभक्त के लिए सब कुछ मटेरियल है ही मेक्स ए मैन मेक्स एवरीथिंग मटेरियल और स्पिरिचुअल बाय हिज कॉन्शियसनेस लेकिन एक साधक भक्त के लिए रेगुलेशन के द्वारा उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग होता है हाउ टू स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग एज स्पिरिचुअल कैसे प्रसाद के माध्यम से ठीक है ये खाना मत खाना लेकिन भगवान को पहले भोग लगाओ फिर इसको खाओ ये प्रसाद तो जब वो भगवान को भोग लगाएगा तो उसकी चेतना में आएगा कि नहीं ये जो पदार्थ है ये कृष्ण की संपत्ति है ये पहले कृष्ण को एंजॉय करना चाहिए देन ओनली आई कैन टेक इट फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस बॉडी लेकिन एक्चुअली एक शुद्ध भक्त के लिए एवरीथिंग इज प्रसाद इससे हम कई बार देखते हैं कुछ शुद्ध भक्त होते हैं कई बार वेरी बाबा जी ग्रेट डिवोटी दे जस्ट टेक हमको लगता है ये तो बट ही इज सीइंग एवरीथिंग इज प्रसाद ही इज ही सी नथिंग एज हिज फॉर हिज एंजॉयमेंट अगर वो कुछ ले रहे हैं जस्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज बॉडी और ये शरीर का उपयोग पूरी तरीके से भगवान की सेवा में कर रहे हैं इसलिए उनकी बॉडी मेंटेनेंस इज नॉट मटीरियल हिज ब्रशिंग टीथ इज नॉट मटीरियल हिज ब्रशिंग टीथ इज ईटिंग नथिंग इज मटीरियल उनके लिए सब कुछ आध्यात्मिक है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में हम देखेंगे कि वो अपने शरीर निर्वाह के लिए कम से कम संलग्न होंगे कम से कम समय देंगे लेकिन एक नया भक्त यदि नकल करने जाएगा ब्रशिंग इज स्पिरिचुअल फॉर ए डिवोटी पता लगेगा 10 मिनट ही इज ब्रशिंग हिज टीथ इन फ्रंट ऑफ मिरर एंजॉयिंग सीइंग हिमसेल्फ सो दैट इज द डिफरेंस सो देयरफॉर नए भक्त के लिए इमिटेशन अलाउड नहीं सो देयर रेगुलेशन बट रियल सेंस में फॉर द हाईएस्ट डिवोटी एवरीथिंग इज दिस इज नथिंग एज एवरीथिंग इज लेकिन हमें अपनी स्थिति को समझना है या साधना स्टेज तो उसके लिए वैदिक विधि इस प्रकार से बनाई गई है कि हम कैसे धीरे धीरे एक एक करके हर चीज में भगवान को देखना प्रारंभ करें तो जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए क्या बताया गया है रसो हम आप सु कौन थे आप भगवान कैसे देखना शुरू करो पहले उनकी शक्ति के माध्यम से आप भगवान को देखना शुरू करो पानी पियो स्वाद आ रहा है वो स्वाद कृष्ण है ऐसा ध्यान करो ये गलत नहीं है सच है ध्यान करो मैं ऐसा नहीं कि है नहीं लेकिन हमें ध्यान करना है सच्चाई है लेकिन आपको कॉन्शियसली उसको ध्यान करना पड़ेगा नहीं तो आप पानी पियेंगे या कोको कोला पियेंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वाइन ऑल्सो द टेस्ट वॉट एवर टेस्ट कम दैट इज कृष्ण इवन इफ यू आर ड्रंक इफ यू आर ड्रिंकिंग वाइन देन ऑल्सो यू कैन रिमेंबर कृष्ण बिकॉज दैट टेस्ट इज कृष्ण सो इवन अ ड्रंकर कैन बिकम कृष्ण कॉन्शियस ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि ही रिमेन्स ड्रंकर बट ही कैन स्टार्ट परसीविंग कृष्णा इवन इन द वाइन तो रसों में अपसुक होते हैं कि भगवान जो पानी का स्वाद है वो भी कृष्ण है तो ऐसे करके वो हर चीज को देखे तो भगवान इसे भगवद गीता में सब बताया ना विभूति योग यू सी ए बिग माउंटेन हेयर इज कृष्ण सो स्पेशली द विभूति द वंडरफुल थिंग तो वो भगवान की विभूतियां हैं भगवान की शक्तियां हैं इसलिए आप उनके माध्यम से देन यू रिलेट ओ व्हाट इज दिस इज कृष्णा देन सो यू कैन रिमेंबर ग्रेजुअली कृष्णा तो इस तरह से धीरे धीरे हमको ट्रेनिंग मिलता है हर चीज को भगवान के संबंध में देखने का वर्तमान में हम हर चीज कैसे देखते हैं फॉर एंजॉयमेंट एवरीथिंग फॉर एंजॉयमेंट रितेर्थम भगवान के संबंध में नहीं देखते निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य मुख्यते उसको युक्त वैराग्य कहते हैं हर चीज को भगवान के संबंध में देखना लेकिन प्रापंचिकतया हरि संबंधी वस्तु नहीं हरि संबंधी जो हरि के संबंध में है हर वस्तु उसको प्रपंचिकता उसको ये भौतिक समझना उसको फल्गु वैराग्य मुच्यते, उसको फल्गु वैराग्य कहा गया। तो इस प्रकार से दो स्टेज हैं, दो कॉन्शियसनेस हैं। कॉन्शियसनेस है जिसकी वजह से कोई भी चीज भौतिक या आध्यात्मिक होती है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली अपने जीवन के लिए वर्तमान समय से किस तरह से उस चेतना में आना शुरू कर सकते हैं, तो उसके लिए सिस्टमेटिक मार्गदर्शन दिया जाता है वैदिक संस्कृति के अनुसार। तो वैदिक संस्कृति में उसका पूरा ट्रेनिंग है। जैसे हम यहां देखें कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसे संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान आने नहीं देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। तो एक प्योर डिवोटी किसी होटल में जाकर काम कर सकता है, टैक्सी चला सकता है, जयानंद प्रभु तो टैक्सी चला करके वो पैसा से मंदिर चलाते थे। तो भगवान के लिए वो कुछ भी काम कर सकता है, किसी की नौकरी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए, एक शुद्ध भक्त अपने लिए कुछ करता ही नहीं। हाइयर स्टेज सब कुछ भगवान के लिए करता है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही करता है, और वो गुरु के मार्गदर्शन से या तो फिर आगे चलकर परमात्मा के मार्गदर्शन। लेकिन एक साधक भक्त अपनी जीविका के लिए स्वतंत्र रहता है। आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है, वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। अब यही तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम लोग किसी की सेवा करते हैं और उसकी वजह से हमारी सेवा में व्यवधान आता है। आता है कि नहीं आता है? नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, हम किसी दूसरे की सेवा स्वीकार करते हैं तो उसकी वजह से हमारी भगवान की सेवा में व्यवधान आता है। क्योंकि सेवा का मतलब है हम हैं तो सब भगवान के सेवक, लेकिन जब हम किसी की सेवा स्वीकार करते हैं ऐसे व्यक्ति की जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तो वो हम उसकी सेवा से वो हमको खींचेगा भगवान से दूर। और यदि हम कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के सेवक हैं, दैट इज गुरु, देन ही विल लीड अस टू कृष्ण। तो साधना स्तर पर जो वैदिक संस्कृति है उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो अपनी जीविका के लिए स्वतंत्र हैं, अर्थात कृष्ण पर निर्भर। स्वतंत्र मतलब नहीं है कि पूर्ण स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, प्रकृति पर निर्भर, जो प्रकृति सीधे मैं अध्यक्ष है ना, प्रकृति जो भगवान के संचालन में काम करते, इसीलिए ही इज डायरेक्टली अंडर। फसल उगाया, भगवान बारिश देंगे तो ही फसल होगा, कोई आदमी के कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो भगवान के द्वारा की गई व्यवस्था है वर्णाश्रम व्यवस्था, वो ये बेस्ट ट्रेनिंग है, एक्चुअली ओनली ट्रेनिंग है, हाउ टू कन्वर्ट एवरीथिंग मटेरियल टू स्पिरिचुअल, इसका ट्रेनिंग है वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था ट्रेनिंग है हर चीज को कैसे स्पिरिचुअलाइज करना। और मॉडर्न सिविलाइजेशन ट्रेनिंग है हाउ टू कन्वर्ट एवरीथिंग स्पिरिचुअल टू मटीरियल, और मटेरियल को और अधिक उसमें कैसे फंसते जाना है, अनर्थम उसमें और फंसते जाना है, ये दोनों में डिफरेंस। क्यों? क्योंकि आधुनिक सभ्यता के हर के लिए हर के अंतर्गत हर चीज भोग के लिए बनाई जा रही है, अपने भोग के लिए बनाई जा रही है, और अधिक अधिक मोर इन्वेंशन मीन्स मोर फर्दर इंटेंगलमेंट इन टू हाउ टू एंजॉय। तो इस वजह से भगवान जो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो हमें और हम उससे दूर चले जाते हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में जो लाइफ है वो इस तरीके से संचालित है कि ग्रेजुअली वी स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग इन रिलेशन विद कृष्णा, सब जगह भगवान को देखना शुरू करते हैं, एंड सो बाय दैट ट्रेनिंग वी बिकम कृष्ण कॉन्शियस। तो उसमें जो लीडर है वो है ब्राह्मण और सन्यासी, जो कृष्ण भावनामृत में अत्यंत बड़े चढ़े हैं। तो जो शूद्र है जो सेवा करता है, लेकिन किसकी सेवा करता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करता है, जो तीनों ही कृष्ण भावनामृत में उन्नत है, विशेष रूप से ब्राह्मण। क्षत्रिय भी ब्राह्मण की सेवा करता है और वैश्य क्षत्रिय की सेवा करता है, अंततः सब ब्राह्मण की सेवा करता है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और गृहस्थ सभी लोग अल्टीमेटली किसके अंडर में रहते हैं? सन्यासी के अंडर में रहते हैं जी। और जो सन्यासी है वो ही इज, सन्यास का मतलब ही इज अंडरस्टैंडिंग, अनाशित कर्म फलम कारण कर्म करोति यः सः सन्यासी च योगी च। तो सन्यासी जो है वो कृष्ण के संबंध को स्पष्ट दृढ़ता से पकड़े हुए समझे हुए, इसलिए उनके अंडर में पूरी सोसाइटी रहती है, ग्रेजुअली वो सब एडवांस करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जीविका के लिए स्वतंत्र रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे हमारी कृष्ण भक्ति में व्यवधान ना पड़े। तो ये जो लैंड बेस्ड सोसाइटी है, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी, ये इसको हेल्प करती है कि भगवान ने सबको जमीन दिया है, सूर्य प्रकाश दिया है, हवा दिया है, सो यू नीड नॉट डिपेंड ऑन एनी पर्सन, यू जस्ट डिपेंड ऑन नेचर, यू जस्ट डिपेंड ऑन कृष्णा। इसे प्रभुपाद जी क्या बोले, मोटो ऑफ लाइफ वैदिक लाइफ इज लिविंग इन द लैप ऑफ मटेरियल नेचर डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, प्रकृति की गोद में रहना, कृष्ण पे समर्पित होकर ये सीखना। सो इट इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन, रादर इट इज वेरी हेल्पफुल, ये बहुत मदद करती है हमको कृष्ण भावनामृत में स्थापित करने के लिए, क्योंकि वहां हम स्पष्ट देख सकते हैं कैसे हर चीज कृष्ण से समर्पित। तो उस व्यक्ति के लिए फिर धीरे धीरे ये सब जो श्लोक हैं यथार्थ में आने लगते हैं उसके जीवन में, कि ब्रह्मार्पणम वो जो भी कार्य कर रहा है डायरेक्टली गोइंग टू बी ऑफर्ड टू कृष्णा, ये कृष्ण का है, ये जमीन कृष्ण की है, अनाज कृष्ण का है, यहां तक कि उसका जीवन यापन प्रसाद भक्ति या प्रसाद सेवा कर रहा है, यस दिस इज बॉडी इज बिलोंग टू कृष्ण, और फिर वो शरीर का यूज करता है कृष्ण की। सो इन नटशेल, अगर हम इस ड्रीम लैंड से निकलना चाहते हैं, सपने से निकलना चाहते हैं, तो हमें अपने कार्य करने की चेतना को बहुत सावधानी से समझना होगा। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, एवरी एक्शन जो भी हम कर रहे हैं वो हमें समझ के करना होगा कि इसका भगवान से क्या रिलेशन है, हाउ दिस वर्क इज प्लीजिंग कृष्णा और हाउ इट इज नॉट प्लीजिंग कृष्णा। जैसे हम करेंगे देन ग्रेजुअली वी विल हैव टू गिव अप द वर्क विच इज नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा। इसे क्या क्या आ गया, अनर्थम उपशमम साक्षात भक्ति योग है ना, भक्ति योग है ना, अधोक्षतम भगवान की जो भक्ति है उससे अनर्थ उपशमम साक्षात, अनर्थ मीन्स ऐसी एक्टिविटीज जिनका कोई अर्थ नहीं है, यूज नहीं है, यानी कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के में जो हमको लीड नहीं कर रही है ऐसी एक्टिविटी, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षतम। तो भक्ति योग से अनर्थ सब खत्म होने चाहिए, अननेसेसरी एंगेजमेंट सब खत्म होना चाहिए, ओनली दैट एंगेजमेंट विच इज लीडिंग अस टू कृष्ण वो होना चाहिए। तो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली टुडे इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट, बट एनीवे स्टार्ट इज देयर चैंटिंग हरे कृष्णा ऑफरिंग प्रसादम स्पेशली बाय हियरिंग अबाउट कृष्ण, दिस इज अ स्टार्टिंग श्रवणादि शुद्ध चित्त, जितना जितना हम हियर करते हैं उतना हमारी चेतना शुद्ध होती है, यस एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, हमको बार बार सुनते रहना पड़ेगा, जहां हम चूके सुनने से ऑटोमेटिकली कॉन्शियसनेस वापस अपने आप आ जाएगी बाय डिफॉल्ट, ही बेटर आई एम हेयर टू एंजॉय, आई एम हेयर टू एंजॉय बाई डिफॉल्ट, उसके लिए कुछ प्रयास की जरूरत नहीं, इट्स ऑलरेडी सेट, प्रोग्राम इज सेट फॉर मिलियंस ऑफ बर्थ, इसलिए जरूरी है सततम कीर्तयन्तो माम यदन पश्च दृढ़ता, ऑलवेज वी हैव टू डू कीर्तन, ऑलवेज वी हैव टू एंगेज, इसलिए कितना जरूरी है टू स्पेयर मोर एंड मोर टाइम एज मच एज वी कैन फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर रीडिंग भगवद्गीता, इसलिए समय बहुत कीमती है भक्तों के, सबके लिए क्या समय कीमती है, बट एक्चुअली इट्स रियल कीमती है भक्तों के लिए, बाकी के लिए तो वो जो समय को बचाते हैं वो दूसरे तरीके से उसको भौतिक में ही कार्य में लगाते हैं, तो उनके लिए तो वो एक ही सिक्के के दो पहलू जाता है, लेकिन भक्तों के लिए क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए ना, अभी हम जो कार्य कर रहे हैं एक तो कार्य भी ऐसे हैं हमारे कि वो कृष्ण से इच्छा के विरुद्ध है, करेक्ट, तो जो कृष्ण भावना भावित कार्य हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार जो वर्णाश्रम के कार्य हैं, उनको करने के समय में भगवान का स्मरण करने के लिए भी धीरे धीरे ट्रेनिंग चाहिए। तो इन कार्य को करते समय भगवान का स्मरण करने के लिए एक्चुअली केवल ट्रेनिंग नहीं, बट ट्रेनिंग से भी और जाना चाहिए कि या तो आप 100% यू आर यूजिंग द फ्रूट्स फॉर कृष्णा और देयर शुड बी सम स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम अथॉरिटी दैट देयर इज नो अदर वे, ओनली यू हैव टू डू दिस, इट्स वेरी मच नीडेड फॉर कृष्णा, अदरवाइज देयर विल बी ओनली अ पार्ट, कुछ मेरे लिए कुछ भगवान के लिए, ऐसे रहेगा। लेकिन कुछ भी है, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए कार्य करते समय हम कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कर सकें, उसके लिए जरूरी है कि हम साधना के लिए समय निकालें। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग आसानी से कार्य करते समय कृष्ण चेतना में कार्य कर पाएंगे, ड्रीम से बाहर निकल पाएंगे। इवन फॉर फुल टाइम डिवोटीज इट इज डिफिकल्ट, इवन व्हाइल डूइंग डिवोशनल एक्टिविटीज वी बिकम लॉस्ट व्हेन वी आर डूइंग कीर्तन या चैंटिंग, सिंपल उदाहरण, जब करते समय हम कितना समय कृष्ण कॉन्शियस रह पाते हैं, जस्ट इमेजिन जब हम भगवान का नाम लेते हुए या भगवान का दर्शन करते हुए जब हमारी चेतना लॉस हो जाती है, हाउ मच व्हेन वी आर डीलिंग विद ग्लैमर चकाचौंध, जहां पर पूरा इंफेसिस है बुराने पर कि कृष्ण नहीं है, वी आर हेयर टू एंजॉय, लाइफ इज टू एंजॉय, सो वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन कुछ हद तक संभव है, कम से कम स्टार्टिंग प्रारंभ संभव है, जब हमारी बहुत स्ट्रांग स्पष्ट साधना होगी, दैट मीन्स एटलीस्ट वी आर गिविंग वेरी फिक्स्ड अप अटेंशन, सम टाइम वी आर सेपरेटिंग, जिसमें हम लोग कृष्ण का नाम सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहे हैं, बार बार वी हैव टू हियर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, क्या सुनना है, नहीं केवल वो गोपी लीला, गोपी लीला अभी क्या समझेंगे हम, वर्तमान समय में हम क्या समझेंगे, अभी तो हम भगवान की भौतिक जगत के संबंध में लीला, इससे हम रिलेट कर सकते हैं भगवान, जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट होता है उसको हम कृष्ण भावना में एक्सप्लेन करते हैं सो दैट ही कैन रिलेट टू इट, ओके हु इज द बिगेस्ट साइंटिस्ट, थिंक ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट, सो ही कैन रिलेट टू इट बिकॉज ही इज इन दिस फील्ड, साइंस फील्ड में, आइंस्टाइन, हु मेड साइंटिस्ट, हु मेड आइंस्टाइन, व्हाट आइंस्टाइन डिड, हु मेड दिस होल वर्ल्ड, सो लाइक दैट रिलेट। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जब हम हैं, आध्यात्मिक जगत से बिल्कुल कटे हुए हैं, भौतिक जगत के संबंध में हैं, तो वी कैन इजीली रिलेट टू कृष्णा पास्ट टाइम्स रिगार्डिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज भगवान जो इस भौतिक जगत को जो क्रिएट करते हैं, संहार करते हैं, कैसे करते हैं, अवतरण लेते हैं अलग अलग, उसके विषय में जो लीला है वो हमको इस समय हम उसको समझ सकते हैं, और उससे धीरे शुद्ध होकर के फिर हम वृंदावन लीला जो आध्यात्मिक जगत की लीला है उनको भी समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें, आप देखिए भगवद गीता में क्या सब्जेक्ट मैटर, मटेरियल नेचर, बट दिस डिस्कशन ऑफ मटेरियल नेचर इज नॉट जो हम स्कूल या कॉलेज में मटेरियल नेचर का डिस्कशन पढ़ रहे हैं या केमिकल्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी केमिकल पढ़ रहे हैं, भगवान बताते हैं रसों अपसु कौन थे और पृथ्वी की जो सब वो जो सुगंध है वो मैं हूँ, सो दैट देयर आल्सो डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल नेचर, भागवतम में पूरा जहाँ पर जो चैप्टर्स हैं दे आर डेडिकेटेड टू अंडरस्टैंडिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंजॉइंग दैम, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग दैम इन रिलेशन विद कृष्णा, भगवान के संबंध में देखने से, दैट इज रियली सीइंग मटेरियल वर्ल्ड। तो इसलिए मटेरियल वर्ल्ड को भी कौन जानता है, केवल भक्त जानता है, मटेरियल वर्ल्ड को भी भौतिकवादी लोग नहीं जानते हैं, भौतिक जगत को भी भक्त ही जानता है, क्योंकि भौतिक जगत को वो मेरे एंजॉय की वस्तु है देखना, ये भौतिक वस्तु को देखना नहीं है, इट इज इल्यूजन, हृतेर्थम यत् प्रतीयेत, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज इल्यूजन, दैट विल बाइंड यू। लेकिन भौतिक जगत को भगवान के संबंध में देखना, ओ दिस प्लेस, ये जेल है, अभी हम यहां आए हैं, यहां से निकलना है, कैसे क्या निकलना है, चेतना को परिवर्तित करना है, तो यहां रह करके अभी हम जेल में हैं, यहां अभी हमारा इस संबंध में ये चीज है, let me use all these things for Krishna service. Let me use this body for Krishna service. Ye. Or, saath-saath, completely spiritual activities ki bhi training. Like, chanting Hare Krishna. Ye body maintenance ko Krishna Bhavanamrit mein karna, that is only in this material world. But chanting Hare Krishna, reading Bhagavad Gita, dusro ko sunana, deity worship, these are the activities of spiritual world. So, hume jyatya samay nikalna chahiye for those activities of the spiritual world. और जो शरीर यापन के लिए एक्टिविटीज हैं उनको कम से कम समय में पूरा करना चाहिए और उनको भी ऐसे करना चाहिए जैसे वो जिससे वो कृष्ण के संबंध में की जा सके, जिससे कि हर समय 24 घंटे हम लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकें. नहीं तो हम ड्रीम जितना समय बिताएंगे उसके अलावा दैट विल बी ड्रीम. और ड्रीम तो क्या होता है, ड्रीम गया तो गया, खत्म हो जाता है. कुछ समय तक उसका इफेक्ट रहता है, कोई बहुत बुरा सपना देखा है तो एक घंटा दो घंटा तक कुछ डर लगता है. लेकिन ये जो ड्रीम है भौतिक जगत का जो हम कार्य कर रहे हैं तो ये तो इसका जो बंधन है दैट गोज ऑन फॉर मैनी मैनी बर्थ. कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा. हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी वजह से अनेक अनेक हमारे शरीर बनते जा रहे हैं. यू हैव टू वेरी सीरियस थिंग क्या हो रहा है, इतने शरीर बनते जा रहे हैं. मैं हम वी विल हैव टू टेक बर्थ सो मैनी बर्थ. सो वी शुड बी डिटरमिन्ड आई विल नॉट सी ड्रीम्स नाउ. जैसे जब अलार्म बजना शुरू होता है सोते हम लोग तो पहली स्टेज होती है अलार्म भी ड्रीम के अंदर आ जाता है. लगता है हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन की घंटी बज रही है. व्हाट वाज दैट, क्या था, एक अलार्म क्लॉक था और क्या दूसरा क्या था? तो क्या बज रहा था?
अलार्म बजा था.
वो उसको स्पीकर में ढूंढ रहे थे, तो वो सो रहे थे. तो एक अलार्म रखा था और एक स्पीकर, तो वो स्पीकर सुनते सुनते सो गए और फिर अलार्म बजा तो वो स्पीकर उठा के देख रहे हैं आज कहाँ से आ रही है. आज मैं देखे उसको आज कहाँ से, सही नहीं आता, ऑफ कर सब स्विच ऑफ हो गई, कहाँ से आ रही है आवाज, सही नहीं. लाइक दैट. तो जो ये अलार्म है दैट एंटर्स इन टू आवर ड्रीम. तो इसी तरीके से हमारे साथ क्या हो रहा है, दिस मटेरियल वर्ल्ड हैज एंटर्ड इनटू अ ड्रीम. एक्चुअली दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कृष्णाज मटेरियल वर्ल्ड, इज कृष्णाज एनर्जी. लेकिन हमें क्या लगता है, इट इज फॉर मी, इट इज माई एनर्जी, इट इज फॉर मी, इट हैज एंटर्ड. फिर एक चीज आती है, देन यू अंडरस्टैंड, ओह एक्चुअली आई एम स्लीपिंग, आई हैव टू गेट अप नाउ. लेकिन अभी भी उठे नहीं है, बट अभी उठना है तो उठता है. लाइक दैट. सो वी आर समथिंग लाइक देयर, हाँ भक्ति में आ गया, अभी उठना है. बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू properly fix our consciousness, always Krishna consciousness. We continue to stay, linger on the material consciousness. And then stage comes, Muklitam, Mukta, fully conscious. इसलिए ये साधना का बहुत महत्व है. इसलिए जब करते समय सब very carefully we have to do, we have to take out time for this. So it's important. Hare Krishna. Oh, it's 9:45. Any questions? Late ho raha hai na?
Hare Krishna. Jo tap karte samay bhi agar wo consciousness mein hai to bhi wo material hai.
Yes. Material means it will not be completely spiritual. Depend on your level of consciousness. ये था माम प्रपद्यंते. जितना भौतिक विचार आ रहे हैं अभी आप जब कर रहे हैं लेकिन आप ध्यान कर रहे हैं फैक्ट्री का, सो देन या आधारभूत आपकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है, मायावाद अंडरस्टैंडिंग, सो देन द वर्ड हरे कृष्णा साउंड विल नॉट कम आउट. सो जब यू आर नॉट डूइंग जब, मन इज नॉट डूइंग जब, इफ ही इज हैविंग दिस मिसकंसेप्शन, इसलिए वो दस नाम अपराध हैं. सो यू कैन नॉट प्रोनाउंस कृष्णा इफ यू आर हैविंग दोज मिसकंसेप्शन. हाँ पर अपराध मीन्स आप यू स्टार्ट विद इट बट देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू व्हाट इज क्या सही है क्या गलत है. नहीं तो आप अपराध बुद्धि को कल्टिवेट करेंगे, मेंटेन कर रखेंगे, तब फिर नथिंग बट वेरी स्लो इफेक्ट. बहु जन में
प्रेम नहीं
फिर क्या
शुद्धि होगी धीरे धीरे प्रभुपाद के मोर टाइम
बहुत है वही
कृष्ण प्रेम तो शुद्ध नहीं
दैट कैन बी कॉल्ड मेडिसिन ना
बट इट्स सो डाइल्यूटेड ऑलमोस्ट लाइक फिर तो ये स्वर्णिम में चला जाएगा ना 10,000 साल का समय चला जाएगा तो उसको यू हैव टू वेट फॉर दैट सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज इट इज गॉन फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज फॉर थियोरटिकल सेक इट इज बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज इट इज गॉन इट्स नॉट हैविंग वेरी वेरी डाइल्यूटेड हरे कृष्ण श्रीमद भगवद गीता की जय श्री प्रभुपाद की जय